ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा की महिमा अपरम अपार है और जितनी उनकी महिमा है उसी अनुसार उनके कितने नाम हैं, है ना। बहुत सारे नाम है, सहस्त्र नाम कहते हैं शिव के, 1000 सहस्त्र। तो वो महिमा का आधार क्या है? जरूर शिव ने आकर के इतना कर्तव्य किया होगा, कितना कार्य किया होगा, तभी उसी के नाम पर उनके इतने नाम हैं, इतनी उनकी महिमा है। तो बाबा ने आज एक नाम याद किया है, बबुलनाथ। गाम देवी के पास यह मंदिर है, बबुलनाथ गाम देवी सेंटर के पीछे ही है बबुलनाथ। और बाबा जब लौकिक धंधे में थे तो मुंबई में उनका घर था, क्योंकि वहां भी जाके रहते थे। अभी भी वो मकान है वहां जो रहते हैं, वो बताते हैं यहाँ एक बहुत बड़े जौहरी रहते थे। तो बाबा रोज जब मुंबई जाते थे तो बबुलनाथ मंदिर में जरूर जाते थे। तो बाबा हमेशा उसका रेफरेंस देते हैं, बबुल माना कांटा। तो शिव बाबा आकर के कांटों को फूल बनाते हैं। तो आज की सारी मुरली है बाबा कैसे कांटों से फूल बनाते हैं। ये दुनिया है ही कांटों का जंगल, तो कांटे क्या करते हैं? दुख देते हैं, सुख थोड़ी देते हैं। और फूल सुख देते हैं, खुशी देते हैं। तो ये दुनिया है ही कांटों का जंगल, सब कांटों मिसल एक दो को दुख देते हैं। और शिव बाबा आए हैं बच्चों को फूल बनाने। तो हम सब क्या है? कांटे तो नहीं है ना, अभी तो हम फूल बन रहे हैं। ये भी नहीं कहेंगे पूरे फूल बन गए, क्योंकि कभी कभी तो मुख से ऐसे शब्द निकल आते हैं ना जिससे किसी को दुख पहुंचता भी होगा, लेकिन हम कहेंगे हम बन रहे हैं। तो अगर बन रहे हैं तो फिर कांटा तो फिर वापस नहीं बनना है ना। फूल बनने की प्रक्रिया चालू हो गई है तो वापस तो कांटा नहीं बनना है, लेकिन कई बच्चे फिर जाकर कांटा बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? फूल बनते बनते कांटा बन जाते हैं। कैसे? बाबा को छोड़ देते हैं या संशय बुद्धि हो जाती है। तो संशय बुद्धि हुई माना जैसे फिर से जाकर कांटा बना। इसीलिए बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। तो स्वयं में तो निश्चय हो, लेकिन सबसे बड़ा बाप में निश्चय। और शिव बाबा अभी हमारा टीचर बन हमको पढ़ा रहे हैं, ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ा रहे हैं। ये इतना बड़ा निश्चय है जिसको कई बार बैठना मुश्किल लगता है, क्योंकि भूल जाते हैं। शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं। बाबा कहते स्टूडेंट है, ये भी अगर सदा याद रहे तो शिव बाबा हमारा टीचर हमको पढ़ा रहे। तो वैसे तो सब संबंधों का बाबा वर्णन करते हैं, लेकिन निश्चय जरूर चाहिए। बिना निश्चय के स्थिति हमारी कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकेगी। तो आज बाबा ने विशेष इन दो बातों पर ध्यान खिंचवाया है। सुनेंगे बाबा के महावाक्य आज 17/5/2025 है। मीठे बच्चे, अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूं। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूं। कैसे बन जाते कांटा? कोई देह अहंकार आया फिर कांटे बन जाते हैं। बाप आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाने। मीठे बच्चे, अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूं। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूं। बाप आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाने। प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है? बाबा से प्यार कभी कभी टूट जाता है ना, तो क्या निश्चय चाहिए जिसके आधार से बाप से अटूट प्यार रह सकता है? तो उत्तर है, पहले अपने को आत्मा निश्चय करो। अब बे अभिमान में आते हैं तो बाबा भूल जाते हैं, तो वो निश्चय भी भूल जाता है। पहले अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप से प्यार रहेगा। ये भी अटूट निश्चय चाहिए, पहले तो खुद में निश्चय, फिर बाबा में निश्चय, कि ये भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागी रथ पर विराजमान है। वो हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं, वो शिव बाबा हमको इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब ये निश्चय टूटता है, शिव बाबा इस भागीरथ द्वारा पढ़ा रहे हैं, ये निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है। तो ये भी अपनी चेकिंग करनी है, अगर प्यार कम हो रहा है तो ये भी निश्चय मेरा डामाडोल हो रहा है कि शिव बाबा इनके द्वारा हमको पढ़ा रहा है। और फिर खुद में भी निश्चय का भी डामाडोल हो जाता है, क्योंकि आत्मा ही नहीं समझते, देह भान में आ जाते हैं। ओम शांति। कांटे से फूल बनाने वाले भगवानुवाच अथवा बागवान भगवानुवाच, वो बागवान है कांटे से फूल बनाने वाले हैं, तो वो भगवान भगवानुवाच। बच्चे जानते हैं कि हम यहाँ कांटे से फूल बनने के लिए आए हैं। हर एक समझते हैं पहले हम कांटे थे, है ना, हम सब समझते ना, पहले कांटे थे, कितना दुख देते थे एक दो को, अब फूल बन रहे हैं। बाप की महिमा तो बहुत करते हैं, पति पावन आओ, वो खिवैया है, बागवान है, पाप कटेश्वर है, बहुत ही नाम कहते हैं, परंतु चित्र तो सब जगह एक ही है। हाँ, जहां भी जाएंगे चित्र तो सब जगह एक ही शिवलिंग दिखाते हैं, परंतु चित्र तो सब जगह एक ही है। उनकी महिमा भी गाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। अभी तुम जानते हो हम उस बाप के पास बैठे हैं जिसकी इतनी अपरम्पार महिमा है, जिसके इतने नाम है, जिसके इतने मंदिर है, उस बाप के सामने बैठे हैं। कांटे रूपी मनुष्य से अभी हम फूल रूपी देवता बनने आए हैं। ये एम ऑब्जेक्ट है। अब हरेक को अपने दिल में देखना है, अपने दिल में देखना है। क्या देखना है? हमारे में दैवी गुण है, मैं सर्वगुण संपन्न हूं। आगे तो देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को कांटा समझते थे, है ना, मैं निर्गुण हारे में को गुण आई, तो बाबा कहते हैं अपने को कांटा ही समझते थे और देवताओं की महिमा गाते थे, उनके गुणगान करते थे। तो आगे तो देवताओं की महिमा गाते थे और अपने को कांटा समझते थे, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, क्योंकि पांच विकार हैं। तो पांच विकार है तो कहां गुण होंगे? देह अभिमान भी बहुत कड़ा अभिमान है, देह का अभिमान। बाकी तो कितनी चीजों का अभिमान आता है, धन मान शान, ये न जाने क्या क्या अभिमान आता है, लेकिन देह का अभिमान ये भी बहुत बड़ा अभिमान है। तो अपने को आत्मा समझे तो बाप के साथ भी बहुत प्यार रहे। अभी तुम जानते हो निराकार बाप इस रथ पर विराजमान है। ये निश्चय करते करते भी फिर निश्चय टूट पड़ता है। तुम कहते भी हो हम आए हैं शिव बाबा के पास। हाँ, मधुबन में क्यों आए हैं? शिव बाबा के पास, जो इस भागीरथ प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है। हम सभी आत्माओं का बाप एक शिव बाबा है, वो इस रथ में विराजमान है। ये बिल्कुल पक्का निश्चय चाहिए। इसमें ही माया संशय में लाती है। फिर बाबा मिसाल देते हैं, कन्या पति के साथ शादी करती है तो समझती है ना उनसे बहुत सुख मिलेगा। क्यों शादी करती है? समझती है पति से हमको बहुत सुख मिलेगा, परंतु सुख क्या मिलता है? शादी बर्बादी है ना, ऐसे ही कहते हैं। परंतु सुख क्या मिलता है? फट से जाके अपवित्र बनती है। क्या सुख मिला? अपवित्र बनी तो सुख क्या मिला? फट से जाकर अपवित्र बनती है। कुमारी है तो माँ बाप आदि सब माथा टेकते हैं। कुमारी के आगे सब माथा टेकते हैं, माँ बाप भी माथा टेकते हैं। कन्याओं की तो पूजा होती है खास नवरात्रि के दिनों में, तो माँ बाप आदि सब माथा टेकते हैं क्योंकि पवित्र है। अपवित्र बनी और सबके आगे माथा टेकना शुरू कर देती है। शादी करके जैसे घर में एंट्री हुई, सास कहेगी हाँ पहले तो सिर ढको, फिर सिर ढको, हाँ ससुर के पांव पड़ो, जेठ के पांव पड़े, इनको पड़ो, इनके पांव पड़ो, इनके पांव पड़ो, तो सबके पांव पड़ती है। तो अपवित्र बनी और सबके आगे माथा टेकना शुरू कर देती है। आज सब उनको माथा टेकते और कल खुद माथा टेकने लगती है। क्यों? क्यों अंतर पड़ गया? क्योंकि अपवित्र बनी। अब तुम बच्चे संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हो। कल कहाँ होंगे? हाँ बताओ कल कहाँ होंगे? आज ये घर घाट क्या है? कलयुग ये घर घाट क्या है? कितना गंद लगा हुआ है। इसको कहा ही जाता है वैशालय। तो आज कहाँ है और कल कहाँ होंगे? इसको कहा ही जाता है वैशालय। सब विष से पैदा होते हैं। तुम ही शिवालय में थे आज से 5000 वर्ष पहले, बहुत सुखी थे। याद आता है ना, आज से 5000 वर्ष पहले बहुत सुखी थे। दुख का नाम निशान नहीं था। अब फिर ऐसा बनने के लिए आयो? मनुष्यों को शिवालय का तो पता ही नहीं है। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की। बाबा तो सभी कहते हैं, बाबा तो सभी कहते हैं, परंतु पूछो फादर कहाँ है? हाँ, बहुत शिव के बंदे थे, जहां भी जाते शिव बाबा, शिव बाबा भी कहते हैं, बहुत कहते हैं शिव बाबा। तो माना बाबा माना पिता, तो बाबा तो सभी कहते हैं उनको, परंतु पूछो वो फादर, वो पिता है कहाँ? तो कह देते हैं सर्वव्यापी है। कुत्ते बिल्ली कच्छ मच्छ में कह देते हैं, तो कितना फर्क हुआ। कहाँ उनकी पूजा करते हैं, बाबा कहते हैं, पिता कहते हैं, और फिर क्या कह देते हैं? सब जगह है, कुत्ते बिल्ली कच्छ मच्छ में सब में फर्क, सब में कह देते, तो कितना फर्क हुआ। एक तरफ पिता का और कहाँ उनको कह दिया। तो बाप कहते हैं तुम पुरुषोत्तम थे, फिर 84 जन्म भोग कर तुम क्या बने हो? नर्कवासी बने हो, इसलिए सब गाते हैं। सब नर्कवासी बन गए हैं, इसीलिए सब क्या गाते हैं? हे पतित पावन आओ, क्योंकि नर्कवासी बन गए हैं। अभी बाप पावन बनाने आए हैं, कहते हैं ये अंतिम जन्म विष पीना छोड़ो। छोड़ो, हाँ ये भगवान ही कह सकता है, और मनुष्य तो डरेंगे, गुरु भी डरेंगे, क्योंकि वो अगर कह भी दे ना विष पीना छोड़ो तो उनके जो शिष्य है वो सब भाग जाएंगे, है ना। इसीलिए वो शिष्य बने रहे, आते रहे, कथाएं सुनते रहे, तो कभी ये नहीं कहेंगे विष पीना छोड़ो। फिर भी समझते नहीं बाबा, हाँ तो कहते हैं ये अंतिम जन्म विष पीना छोड़ो, फिर भी समझते नहीं। सभी आत्माओं का बाप अब कहते हैं पवित्र बनो। सब कहते हैं हे बाबा, हाँ हे बाबा, हाँ सब कहते हैं ना हे बाबा, हाँ बाबा बाबा शब्द तो सब कहते हैं। पहले आत्मा को वो बाबा याद आता है, फिर ये बाबा, कौन बाबा, शिव बाबा याद आता है, फिर ये ब्रह्मा बाबा, निराकार में वो बाबा और साकार में फिर ये बाबा। सुप्रीम आत्मा इन पतित आत्माओं को बैठ समझाती है, तुम भी पहले पवित्र थे, बाप के साथ नहीं रहते थे, फिर तुम यहाँ आए हो पाठ बजाने, इस चक्र को अच्छी रीति समझ लो। बाबा चक्र को भी नहीं भूलते, हमेशा कहते अच्छी रीति समझ लो इस चक्र को। अभी हम सतयुग में नई दुनिया में जाने वाले हैं, सब जाने वाले नई दुनिया में, तो तुम्हारी आश भी है ना, सबकी आश है क्या कि हम स्वर्ग में जाएं। तुम कहते भी थे कि कृष्ण जैसा बच्चा मिले, माताएं कहती थी, जब कहती थी अभी शादी हो गई बच्चा भी होने वाला है तो कहती थी मुझे श्री कृष्ण जैसा बच्चा चाहिए। किस माँ ने ऐसा सोचा कृष्ण जैसा बच्चा चाहिए? अच्छा ऐसे सोचा था, फिर कृष्ण जैसा बच्चा हुआ। तो बाबा कहते हैं माताएं ये सोचती है कि हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। सतो श्री कृष्ण जैसा बच्चा क्यों चाहती है? क्योंकि हाँ वो फूल बच्चा है ना, वहाँ बच्चे होते ही है श्री कृष्ण जैसे, कलयुग में कहाँ से श्री कृष्ण जैसे बच्चे होंगे। सतो प्रधान फूल है ना, श्री कृष्ण सतो प्रधान फूल है। अभी तुम कृष्णपुरी में चलते हो, आप तो स्वर्ग के मालिक बनते हो, तो अपने से पूछना चाहिए हम फूल बना हूँ। बहुत बड़ा प्रश्न है ये खुद के लिए, मैं फूल बना हूँ, कहाँ देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। मनुष्य अपने को आत्मा समझने बदले देह समझ लेते हैं, आत्मा को भूलने से बाप को भी भूल गए हैं। खुद से दूर हुए हैं तो परमात्मा से भी दूर हुए हैं, तो आत्मा को भूलने से बाप को भी भूल गए हैं। बाप को बाप द्वारा ही जानने से बाप का वर्षा मिलता है, बहुत बड़ी बात है, बाप को बाप द्वारा ही जानने से बाप का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप से वर्षा तो सभी को मिलता है, अब बेहद के बाप से मिलता है वर्षा सबको, किसको मुक्ति का वर्षा मिलता है, किसको जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, तो बेहद के बाप से वर्षा तो सभी को मिलता है, एक भी नहीं रहता जिसको वर्षा ना मिले। चलो बाप को न भी पहचाना हो तो भी बाप से वर्षा मुक्ति का तो मिलता ही है ना, घर तो सब जाएंगे ना, भले बाप को पहचाना या नहीं पहचाना। तो बाबा कहते हैं मैं तो सबको ले जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, तो वर्षा तो सबको देती है ना, मुक्ति या जीवन मुक्ति। हाँ एक भी नहीं रहता जिसको वर्षा न मिले, बाप ही आकर सबको पावन बनाते हैं, निर्वाण धाम में ले जाते हैं। वो तो कह देते हैं, सन्यासी क्या कह देते हैं, ज्योति ज्योत समाया, ब्रह्म में लीन हो गया। किसी भी सन्यासी के लिए कभी नहीं ऐसे कहेंगे वो मर गया, परंतु क्या कहेंगे वो ब्रह्मलीन हो गया, ब्रह्मलीन शब्द यूज करते हैं, वो ज्योति ज्योत समा गया। तो ज्योति ज्योत समाया, ब्रह्म में लीन हो गया, ज्ञान कुछ भी नहीं। तुम जानते हो हम किसके पास आए हैं, ये कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है, हम सब किसके पास आए हैं? हाँ, मनुष्य का सत्संग नहीं है, आत्माएं परमात्मा से अलग हुई, अब उनका संग मिला है। सच्चा सच्चा ये सत का संग 5000 वर्ष में एक ही बार होता है, तो कितना कदर होना चाहिए सत्संग का, 5000 वर्ष में एक ही बार मिलता है। सत्य त्रेता में तो सत्संग होता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। बाकी भक्ति मार्ग में तो अनेक ढेर के ढेर सत्संग है। अब वास्तव में सत तो है ही एक बाप, अभी तुम उनके संग में बैठे हो। बाबा की मुरली सुन रहे हैं तो किसके संग में बैठे हैं? बाबा के संग में बैठे हैं। ये भी स्मृति में रहे, अब बाबा के संग में बैठे हैं, पिता के संग में बैठे हैं, लेकिन शिव बाबा केवल पिता तो नहीं है ना, वो टीचर भी है। तो बाबा कहते हैं ये भी स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं। और बाबा के अगर ये स्मृति भी सदा याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। लेकिन ये भी कई बार भूल जाते हैं ना कि हमारा टीचर कौन, हमारा बाबा यहाँ है। वो बाप टीचर फिर गुरु भी बनते हैं, तीनों ही पार्ट अभी बजा रहे हैं। इतना पक्का निश्चय चाहिए कि शिव बाबा हमारा बाप टीचर सतगुरु तीनों ही पार्ट अभी बजा रहे हैं। बच्चों को अपना बनाते हैं तो बाप कहते हैं याद से ही विकर्म विनाश होंगे, बाप को याद करने से ही पाप कटते हैं, फिर तुमको लाइट का ताज मिल जाता है। पाप कट गए तो फिर लाइट का ताज मिल जाता है, क्योंकि पावन बन गए, सब पाप कट गए तो तुमको फिर लाइट का ताज मिल जाता है। ये भी एक निशानी है, ये लाइट का ताज पावनता की निशानी है। बाकी ऐसे नहीं कि लाइट देखने में आती है, दिखाई नहीं देगी, लेकिन कई है ना जो ऑरा देखते हैं, तो कईयों का ऑरा बहुत छोटा होता है, कईयों का बहुत बड़ा ऑरा होता है लाइट, उनको जैसे अनुभव होता है कि लाइट देखने में आती नहीं है। ये पवित्रता की निशानी है, ये नॉलेज और कोई को मिल न सके, देने वाला एक ही बाप है, उनमें फुल नॉलेज है, फुल ऐसे नहीं थोड़ी नॉलेज है, फुल पूरी नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, ये उल्टा झाड़ है, ये कल्प वृक्ष है ना, हाँ गीता में भी आता है कल्प वृक्ष की बात आती है, ऊर्ध्व मूल अध शाखा, जो ये संसार एक उल्टे वृक्ष की के रूप में है, तो उसका जो मूल है वो ऊपर है, ऊर्ध्व ऊपर है और अध माना नीचे, शाखाएं नीचे है, मूल ऊपर है। तो बाबा कहते हैं ये उल्टा झाड़ है, ये उल्टा झाड़ है, ये कल्प वृक्ष है ना, पहले दैवी फूलों का झाड़ था, अभी कांटों का जंगल बन गया है। कहां दैवी फूलों का बगीचा था और कहां कांटों का जंगल बन गया है, क्योंकि 5 विकार आ गए हैं। तो पहला मुख्य कांटा कौन सा है? देह अभिमान, ये सबसे बड़ा पहला नंबर का कांटा है। वहां देह अभिमान रहता नहीं, सतयुग में किसी में भी देह अभिमान नहीं है। इतना समझते हैं सतयुग में, क्या समझते हैं? हम आत्मा हैं, बाकी परमात्मा बाप को नहीं जानते। वहां हम आत्मा हैं बस इतना जानते हैं, दूसरी कोई नॉलेज नहीं। तो बाबा कौन सा मिसाल देते हैं? आत्मा है ये जानते हैं, तो उसका बाबा क्या मिसाल देते हैं? सर्प का मिसाल। जब आत्मा को शरीर छोड़ना होता है, उसको पता है अब मैं आत्मा ये शरीर छोड़ फिर दूसरा लूंगी, क्योंकि जैसे सर्प को पता है एक चमड़ी में उतार करके अंदर से नई चमड़ी मुझे मिल जाएगी, बस दूसरी कोई नॉलेज नहीं। बाबा ने सर्प का मिसाल दिया। अभी तुम्हें समझाया जाता है कि जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई ये खाल है जो अभी तुमको छोड़नी है, पुरानी जन्म जन्मांतर की सड़ी हुई खाल है। ये बाबा क्यों कहते हैं? देह अभिमान से नफरत दिलाने लिए। अभी तुमको छोड़नी है, अभी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर ये शरीर छूट जाएगा। सर्प में भी जब अंदर नई खाल आ जाती है तो वो पुरानी खाल धीरे 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 फटती जाती है और ऐसे ही उतरती जाती है। ये फिर शरीर छूट जाएगा, आत्मा पवित्र हो जाएगी तो आत्मा ही सब भागेगी। अब पवित्र आत्मा ही हो गई, शरीर छूटा तो आत्मा ही सब अपने घर भागेगी। ये ज्ञान तुमको अभी है कि ये नाटक पूरा होता है। अभी हमको बाप के पास जाना है, इसलिए घर को भी याद करना है। बाप तो को तो याद करना ही है, घर को भी याद करना है। इस देह को छोड़ देना है। शरीर खत्म हुआ तो दुनिया खत्म हुई, शरीर खत्म हुआ तो दुनिया खत्म हुई। आत्मा उड़ गई, पंछी उड़ गया, आंखें बंद हो गई। हाँ, तो बाबा कहते उसके लिए दुनिया ही खत्म हो गई। शरीर खत्म हुआ तो दुनिया खत्म हुई। फिर नए घर में जाएंगे तो नया संबंध हो जाएगा। हाँ, ये भी देखो कैसा वंडरफुल है ना, आत्मा उड़ी और जहाँ नया संबंध उनका होना है वहाँ एक सेकंड में पहुंच जाती है। नया संबंध हो जाएगा, वो फिर भी पुनर्जन्म यहाँ ही लेते हैं। तुमको तो पुनर्जन्म लेना है वापस इस कलयुगी दुनिया में, पुनर्जन्म नहीं लेना है। कहाँ लेना है? फूलों की दुनिया में, फिर वापस इस कांटों की दुनिया में नहीं आना है। तुमको पुनर्जन्म लेना है फूलों की दुनिया में। देवताओं को पवित्र कहा जाता है। तुम जानते हो हम ही फूल थे, फिर कांटे बने हैं, फिर फूलों की दुनिया में जाना है। ऐसा चलता है विचार सागर मंथन। हम कांटे थे या फूल बन रहे हैं, फिर हमको कांटे से फूल बनकर फूलों की दुनिया में जाना है। पहले फूलों की दुनिया में थे, बाबा कहते हैं ऐसे विचार सागर मंथन करो। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। ये है खेलपाल। साक्षात्कार जो होंगे, बाबा कहते हैं ये सब है खेलपाल। मीरा ध्यान में खेलती थी ना, नाचती रहती थी मीरा। मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, नाचती रहती थी, गाती जाती थी। तो बाबा कहते थे ये भी खेलपाल है, ध्यान में जो रहती थी मीरा, ध्यान में खेलती थी ना। उनको ज्ञान तो था नहीं मीरा। अब देखो बाबा क्या कहते हैं, मीरा सतयुग में आएगी। देखो बाबा ने क्या कहा, मीरा कोई वैकुंठ में गई नहीं। पहली बात तो ये, भले श्री कृष्ण के साथ रास करती थी, साक्षात्कार में रास करती थी, नाचती रहती थी, दौड़ती रहती थी, लेकिन वो कोई वैकुंठ में गई नहीं। फिर बाबा कहते यहाँ ही कहाँ होगी, कहाँ होगी? ब्राह्मण कुल में होगी। क्या समझते विजय बहन, ब्राह्मण कुल में होंगी? होंगी नहीं होगी? जो समझते हैं वो ब्राह्मण कुल में कहीं आत्मा होगी वहां तो उठाए। अच्छा, सारे समझते हैं, पर वो तो भक्त माला में है ना, तो भक्त शिरोमणि है, तो ब्राह्मण बनेगी क्या? बनेगी। देखो बाबा कहते यहाँ ही कहाँ होगी, इस ब्राह्मण कुल में होगी तो यहाँ ही ज्ञान लेती होगी। वो भी सतयुग में आएगी, आएगी सतयुग में। देखो जी, ज्ञान लेगी तो आएगी। इस ब्राह्मण कुल की होगी तो यहाँ ही ज्ञान लेती होगी। ऐसे नहीं कि डांस किया तो वैकुंठ में चली गई। साक्षात्कार में डांस किया श्री कृष्ण के साथ तो वो कोई वैकुंठ में चली गई। हम तो कहाँ गए थे, जहाँ उसका जन्म स्थान है मीराबाई का, मीरता सिटी। तो मैं मीरता सिटी गई थी, वहाँ उसी मंदिर जो मीराबाई का मंदिर है, उस मंदिर के पास ही वहाँ बड़ा टेंट लगा करके शिविर रखी थी, खास बुलाया था। तो मुझे तो ये था कि मैं मीरता सिटी इसलिए जाऊं क्योंकि मीराबाई का मंदिर देखना है, और वहाँ वो भी दिखा है उसका महल। बहुत, अभी तो खंडर हो गया है वहाँ, परंतु वो भी देखने गए थे। तो वहाँ पर वो जो मंदिर है उसकी विशेषता ये है कि मीराबाई का जो स्टैचू दिखा है वो ऊपर दिखा है, और वहाँ ही श्री कृष्ण का भी स्टैचू है सामने। तो मीरा की जो दृष्टि है वो केवल श्री कृष्ण तरफ ही है, नीचे नहीं देख रही है, सामने भी नहीं देख रही है, लेकिन ऊपर में श्री कृष्ण और उसकी आंखें ऊपर ही देख रही है। बस मीरा भाई किसी को नहीं देखती थी, बस श्री कृष्ण को ही देखती थी। तो ये विशेषता उस मंदिर की है। तो बाबा कहते हैं हाँ, तो ऐसे नहीं डांस किया तो बस वैकुंठ में चली गई, ऐसे तो बहुत डांस करते थे, ध्यान में जाकर देखकर आते थे। यज्ञ में भी तो बहुत ऐसे डांस करते थे, यज्ञ हाँ ध्यान में जाकर देखकर आते थे, फिर जाकर के विकारी बने, बाबा को छोड़ दिया और फिर दुनिया में चले गए और विकारी बने। तो गाया जाता है ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, ये है लंबी खजूर। ये गायन है, ये बहुत बड़ी कहावत है। अगर चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, रस पी लो, खजूर के पेड़ पर चढ़ेंगे तो, और चढ़ गए तो वहां रस पी सकते हो, पर अगर गिरे, क्योंकि बहुत लंबा होता है पेड़, और गिरे तो चकनाचूर, ये है लंबी खजूर। तो बाप भीति देते हैं, आकर्षण देते हैं, तुम वैकुंठ के मालिक बन सकते हो अगर ज्ञान योग सीखेंगे तो। कब बन सकेंगे वैकुंठ के मालिक? जब ज्ञान योग सीखेंगे तो। बाप को छोड़ा तो गए गटर में, बाप को छोड़ा तो गए गटर में, यानी विकारों में। आश्चर्यवत बाबा का बनंती, सुनंती सुनावंती, फिर भागंती हो पड़ते हैं। अहो माया कितनी भारी चोट लग जाती है, माया चोट लगाती है ना, तो अहो माया कितनी भारी चोट लग जाती है। अभी बाप की, अब बाप की श्रीमत पर तुम देवता बनते हो। आत्मा और शरीर दोनों ही श्रेष्ठ चाहिए, देवता बनना है तो आत्मा और शरीर दोनों ही श्रेष्ठ चाहिए। देवताओं का जन्म विकार से नहीं होता है, वो है ही निर्विकारी दुनिया, वहाँ पांच विकार होते नहीं। शिव बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अभी तो नरक है, अभी तुम फिर स्वर्गवासी बनने के लिए आए हो। सभी क्यों आए हो? स्वर्गवासी बनने के लिए, चढ़ता है ना नशा, हम यहाँ क्यों आए हैं? स्वर्गवासी बनने के लिए। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। तुम फिर से पढ़ते हो, कल्प कल्प पढ़ते रहेंगे, अभी पढ़ रहे हो, कल्प कल्प फिर पढ़ते रहेंगे। ये चक्र फिरता रहेगा, ये बना बनाया ड्रामा है, इससे कोई छूट नहीं सकता। ये कितनी सत्य बात है, अगर ये सत्य बात समझ जाए तो कई प्रकार के प्रश्न उड़ जाएं। तो ये बाबा कहते हैं ये बना बनाया ड्रामा है, इनसे कोई छूट नहीं सकता। जो कुछ देखते हो, इतनी गहराई में ये ड्रामा को समझना है कि कोई छूट नहीं सकता। जो कुछ देखते हो, जैसे मच्छर उड़ा, मच्छर आया, मच्छर उड़ा, कल्प बाद भी उड़ेगा वो मच्छर भी, कल्प बाद भी उड़ेगा। इस समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, क्योंकि वो शूट हो गया ना, अब फिल्म कोई शूट हो रही है और वहां से एक पंछी उड़ा, अब एक्टिंग चल रही है एक्टर की और एक पंछी उड़ गया, शूटिंग तो होती ना वो, फिर वो शूट तो हो गया, तो फिर जैसे शूटिंग पूरी हुई वो फिर से देखेंगे फिल्म, तो वो पंछी फिर उड़ेगा, और जितनी बार वो फिल्म चलेगी पंछी फिर उड़ेगा। तो बाबा कहते हैं मच्छर उड़ा, कल्प बाद भी उड़ेगा। इस समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, ये शूटिंग होती रहती है, बना बनाया भी है पर बना बनाया ही बन रहा है, इसीलिए कहते बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। तो बाबा कहते हैं ये शूटिंग होती रहती है, जो शूट हो चुका है वही फिर समझो शूटिंग हो रही है। ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ परम धाम से आते हैं, आए हैं पाठ बजाने। अब इस पढ़ाई में कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई अभी पढ़ रहे हैं होशियार नहीं हुए हैं, कोई पढ़ते पढ़ते पुराने से भी तीखे हो जाते हैं। कैसी वंडरफुल पढ़ाई है, सब पढ़ रहे हैं, कोई तो पढ़ाते भी हैं, लेकिन कोई पढ़ते पढ़ते पढ़ाने वाले से भी ज्यादा होशियार हो जाते हैं। इस पढ़ाई में कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई अभी पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ते पढ़ते पुराने से भी तीखे हो जाते हैं। तो ज्ञान सागर तो सबको पढ़ाते रहते हैं, बाप का बना और विश्व का वर्षा तुम्हारा। हाँ हाँ वो तो ठीक है, बाप का बना विश्व का वर्षा तुम्हारा, परंतु बाबा कहते हैं हाँ तुम्हारी आत्मा जो पतित है उनको पावन भी जरूर बनाना है। भले बाप के बने और वर्षा तुम्हारा, लेकिन आत्मा जो पतित बनी उसको पावन जरूर बनाना है। उसके लिए सहज से सहज तरीका है, पावन बनने के लिए सहज से सहज तरीका है, बेहद के बाप को याद करते रहो तो तुम ये बन जाएंगे, पावन बन जाएंगे। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए, बहुत बड़ी बात है, हाँ वैराग्य आना चाहिए। बाकी मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम है, और किसको भी हम याद नहीं करते सिवाय एक के। मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम भी है, परंतु याद तो एक बाप को ही करना है ना। सवेरे सवेरे उठकर अभ्यास करना है कि हम अशरीरी आए अशरीरी जाना है। फिर कोई भी देहधारी को हम याद क्यों करें, जब आए ही अशरीरी है और जाना भी अशरीरी है, तो फिर हम देहधारी को याद ही क्यों करें। तो सवेरे अमृत वेले उठकर अपने से ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। सवेरे को अमृत वेला कहा जाता है, ज्ञान अमृत है ज्ञान सागर के पास। तो ज्ञान सागर कहते हैं, वो स्वयं ज्ञान सागर क्या कहते हैं, सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे उठकर बहुत प्रेम से बाप को याद करो। हर मुरली में ये बाबा भिन्न भिन्न रूप से सुनाते, कैसे सवेरे उठकर मेरे से क्या बातें करो। तो सवेरे सवेरे उठकर बाबा बहुत प्रेम से बाप को याद करो, और क्या कहो बाबा को, बाबा आप 5000 वर्ष के बाद फिर मिले हो। ऐसे कहो बाबा को प्यार से, आप 5000 वर्ष के बाद फिर मिले हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे, तो उसके लिए फिर श्रीमत पर भी चलना पड़े। याद तो करो पर जो बाबा श्रीमत देते हैं उस पर भी चलना पड़े। सत्तो प्रधान जरूर बनना है, बाप को याद करने की आदत पड़ जाएगी तो खुशी में बैठे रहेंगे, खुशी इतनी बढ़ेगी जो भूल ही जाएंगे सब कुछ। तो आदत पड़ जाएगी बाप को याद करने की तो खुशी में बैठे रहेंगे, शरीर का भान टूटता जाएगा, फिर देह का भान नहीं रहेगा, खुशी बहुत रहेगी। तो तुम बच्चों में तुम खुशी में थे, कब थे, जब पवित्र थे। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान रहना चाहिए। पहले पहले जो आते हैं वो जरूर 84 जन्म लेते हैं। ज्ञान रहना चाहिए तो क्या ज्ञान रहना चाहिए, बाबा वही बताते हैं कि पहले पहले जो आते हैं जरूर वो 84 जन्म लेते होंगे। फिर चंद्रवंशी में जो आते हैं वो कुछ कम जन्म लेंगे, फिर इस्लामी उनसे कम, फिर बौद्धी उनसे कम, क्रिश्चियन उनसे कम, है ना। जैसे जैसे पीछे आते जाएंगे ड्रामा में खेल में तो जन्म कम होते जाएंगे। नंबर वार झाड़ की वृद्धि होती है ना, तो मुख्य है डीटी धर्म, फिर उनसे तीन धर्म निकलते हैं, ये देवता धर्म से ही तीन धर्म निकलते हैं, फिर टाल टालियां निकलती है। अभी तुम ड्रामा को जानते हो, ये ड्रामा कैसे चल रहा है, जू मिसल, सिर में जुएं होती है ना, तो जैसे जू चलती है ना, पता चलता है, पता चलता है जिसके सिर में जुएं होती है, उसको मालूम पड़ता है कि यहाँ जू है। हाँ, तो वो तो ये ड्रामा जू मिसल वो धीरे धीरे फिरता रहता है, सेकंड बाय सेकंड टिक टिक चलती रहती है। इसीलिए गायन है सेकंड बाय सेकंड टिक टिक, जैसे घड़ी की टिक टिक चलती है ना, तो हर सेकंड टिक टिक। तो बाबा कहते हैं सेकंड बाय सेकंड टिक टिक चलती रहती है, इसीलिए गायन है। क्या गायन है? सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में जीवन मुक्ति, वो टिक हुई जीवन मुक्ति मिली। आत्मा अपने बाप को याद करती है, बाबा हम आपके बच्चे हैं। अब और कैसे याद करना है? बाबा हम आपके बच्चे हैं, हम तो स्वर्ग में होने चाहिए, फिर बाबा हम नरक में क्यों पड़े हैं? हम नरक में क्यों पड़े, हम तो तुम्हारे बच्चे हैं, हम स्वर्ग में होने चाहिए। बाप तो स्वर्ग की स्थापना करने वाले हैं, फिर नरक में क्यों पड़े हैं? बच्चे बाबा को कहे, बाबा समझाते हैं तुम स्वर्ग में थे, नरक में पड़े हो, परंतु तुम पहले तो स्वर्ग में थे, 84 जन्म लेते लेते तुम सब भूल गए हो, अब फिर मेरी मत पर चलो, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। शरीर तो आत्मा का जेवर है, आत्मा पवित्र तो शरीर भी पवित्र मिलता है। तुम जानते हो हम स्वर्ग में थे, अब फिर बाप आए हैं, तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना, बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। 5 विकारों को छोड़ना है, देह अभिमान छोड़ना है, काम काज करते बाप को याद करते रहो। आत्मा अपने माशूक को आधा कल्प से याद करती आई है। शिव बाबा को याद करना कोई नई बात नहीं, आधा कल्प से उसको याद करते आए, क्योंकि शिव की भक्ति तो दोपहर से ही शुरू हो गई, तो शिव को तो कितना याद करते आए होंगे। तो माशूक आत्मा को, माशूक अपने माशूक को तो आधा कल्प से याद करती आई है। अब वो माशूक आया हुआ है, कहते हैं, क्या कहता है माशूक? कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो। वो माशूक कहता है तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो, अभी हम सुंदर बनाने आए हैं, उसके लिए ये योग अग्नि है। ज्ञान को चिता नहीं कहेंगे, ज्ञान चिता पर बिठाते नहीं, योग की चिता है, क्योंकि पाप नाश होते ना, अग्नि है, ज्ञान अग्नि नहीं है। ज्ञान को चिता नहीं कहेंगे, योग की चिता है। याद की चिता पर बैठने से विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान को तो नॉलेज कहा जाता है, बाप तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, तो ऊंच से ऊंच बाप है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर है, फिर सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर और धर्म आते हैं। ये बाइप्लॉट्स है, बाइप्लॉट्स माना ये जैसे एक बड़ी कहानी होती है वो उसमें हीरो हीरोइन होते हैं, फिर बाइप्लॉट्स बना उसमें छोटी छोटी कहानियां, वो छोटी छोटी कहानियां ये बाइप्लॉट्स है, तो इसीलिए माना उसी का एक भाग है, परंतु उस हीरो हीरोइन से थोड़ा अलग है, इसलिए वो बाइप्लॉट्स है। तो और जो धर्म वाले आते हैं वो बाइप्लॉट्स है। झाड़ कितना बड़ा हो जाता है, अभी इस झाड़ का फाउंडेशन है नहीं, इसलिए बनियन ट्री का मिसाल दिया जाता है, जिसका फाउंडेशन सड़ गया है, अभी है ही नहीं देवता धर्म। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं, अभी तुम बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करते हो, तो अपनी दृष्टि को सिरी बनाते हो। श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ धर्म है, तो बाबा कहते हैं उसके लिए क्या कर रहे हो? अपनी दृष्टि को सिविल बनाते हो। तुम्हें अब भ्रष्ट कर्म नहीं करना है, भ्रष्ट कर्म नहीं करना है, कोई कुदृष्टि न जाए, क्योंकि कुदृष्टि रखना भी ये भ्रष्ट कर्म है। देह पर ध्यान जाए, देह का आकर्षण हो, चलो और कोई पाप न भी करे लेकिन देह प्रति कोई आकर्षण भी, ये भी बाबा कहते हैं ये भी भ्रष्ट कर्म है। तुम्हें अब भ्रष्ट कर्म नहीं करना है, कोई कुदृष्टि न जाए तो अपने को देखो, हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। रोज पोता मेल देखो, सारे दिन में देह अभिमान में आकर कोई विकर्म तो नहीं किया, ये भी रोज चेकिंग करो, नहीं तो 100 गुणा हो जाएगा। पर फिर बाबा क्या कहते हैं, हाँ 100 गुणा हो जाएगा, ये ध्यान भी खिंचवाते हैं। फिर बाबा कहते हैं पर माया चाट रखने नहीं देगी, तो किसका दोष, क्यों नहीं चाट रखते हैं, माया, माया आती है तो माया चाट रखने नहीं देती। 2-4 दिन लिख कर फिर छोड़ देते हैं, बाप को ओना रहता है ना, बाबा को फिक्र रहता है बच्चों पर कि बच्चे 2-4 दिन चाट लिखते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो रहम पड़ता है बच्चों पर। बच्चे हमको याद करे तो उनके पाप कट जाए, क्यों बाबा को याद नहीं करते, तो बाबा को याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे, तो बाबा को रहम पड़ता है बच्चों पर कि बच्चे मुझे याद करे तो पाप कट जाए। इसमें मेहनत है तो अपने को घाटा नहीं डालना है। ज्ञान तो बहुत सहज है, अच्छा ज्ञान तो बहुत सहज है, घाटा नहीं डालना है, याद में रहना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला सवेरे अमृत वेले उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करनी है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ध्यान रहे बाप की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न आए, कम से कम अमृत वेले तो और कुछ भी याद न आए। दूसरा अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है इसलिए, दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है इसलिए फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। वरदान अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। मनसा सेवा अगर करते हैं तो ये स्व अभ्यासी हो गए ना, स्वयं प्रति अभ्यास है और सबके प्रति भी है लेकिन ये स्व अभ्यासी भव। अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। मनसा पावरफुल होगी तभी तो मनसा सेवा भी कर सकेंगे। विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अंत में हमारी अपनी वृत्ति इतनी पावरफुल हो तब वो मनसा सेवा द्वारा औरों की वृत्ति हम बदल सकेंगे। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा। लाइट माइट देने का अभ्यास होगा तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और ये किला, बाबा का ये ब्राह्मणों का किला मजबूत होगा। स्लोगन समझदार वो है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करता है वो समझदार है। ऐसे नहीं मनसा सेवा अलग टाइम पर, वाचा सेवा अलग टाइम पर, कर्मणा सेवा अलग टाइम पर, नहीं सब साथ साथ। समझदार वो है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करता है। अव्यक्ति इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। जो चैलेंज करते हो सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो, उनको प्रैक्टिकल में लाने के लिए क्या करना होगा। सेकंड में जीवन मुक्ति कहते तो है तो उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्व परिवर्तन की गति सेकंड तक पहुंची है। स्व परिवर्तन की गति सेकंड तक पहुंची है, एक सेकंड में परिवर्तन। स्व परिवर्तन द्वारा औरों को परिवर्तन करना, अनुभव कराओ कि ब्रह्मा कुमार अर्थात वृत्ति दृष्टि कृति और वाणी परिवर्तन, साथ साथ प्यूरिटी की पर्सनालिटी रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराओ। आते ही मिलते ही इस पर्सनालिटी की ओर आकर्षित हो। कोई भी आए वो आपकी प्यूरिटी की पर्सनालिटी रॉयल रूहानी रॉयल्टी का अनुभव उस आत्मा को हो, तो आते ही मिलते ही इस पर्सनालिटी की ओर आकर्षित हो। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हमारे बीच सुरेंद्र भाई है, सुरेंद्र भाई कहाँ है? सुरेंद्र भाई आइए दो मिनट, बहुत अच्छा भट्टी का थोड़ा अनुभव सुनाएंगे। और आज भट्टी वाले जा रहे हैं, जो जा रहे हैं हाथ उठाए, भट्टी वाले सारे जा रहे हैं, कोई कल भी जाएंगे, जो कल जाएंगे वो हाथ उठाए भट्टी वाले। अच्छा वो भी है क्या? तो हमारे सुरेंद्र भाई बहुत सेवा करते हैं। बाबा कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो पूरे परिवार वालों को आप लाते हैं, शिविर भी कराते हैं, खास शिविर लेते हैं, पूरे उनके रिश्तेदार उनके मित्र संबंधी सबको निमंत्रण देते हैं और वो शिविर में आते हैं। फिर अभी इनके रिश्तेदारों को भी लाए हैं, इनके रिश्तेदारों को भी लाए हैं और वो इसमें आए हैं। तो दो मिनट बताएंगे। और ये छोटी सी बच्ची आई है, डांस करेगी। अरे वाह,
ओम शांति ओम शांति। पांडव भवन में भट्टी का मिलना ये अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य की बात है हम सब के लिए जो इस भट्टी में आए हैं, और खास तौर पे जो इस विशेष भट्टी में आए हैं। तो परिस्थिति अनुसार हम देखते हैं कि बाहर की परिस्थिति किस टाइप से मोड़ लिया था, और एक बार तो ऐसा लगा था कि शायद ये भट्टी कैंसिल हो जाए। और ये बाबा की कमाल है कि हम सब जो भाई बहन इस भट्टी में आ रहे थे उनकी योग की कमाल है और उनकी तपस्या की कमाल है कि बाबा ने वो सारी जो परिस्थिति अनुकूल कर दी। और जो यहाँ पे जो ब्लैकआउट हो रहा था, तो इस भट्टी में जो भाई बहन आए हुए थे तो उनके आने के बाद स्थिति एकदम सामान्य बन गई। तो ये भी अपने लिए आप सब ताली बजाएं। और इस भट्टी का सबसे पहले तो मैं बाप दादा को और हमारी दादियों को, खास तौर पे हमारी मुन्नी दीदी जी को, शशि दीदी को और शीलू दीदी जी को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो ऐसा प्रोग्राम पांडव भवन में 7-8 वर्ष से चल रही है ये बठिया। नहीं तो इससे पहले मधुबन के अंदर सिर्फ 4 धाम की यात्रा करने के लिए आते थे, तब से ये जो बठियों का प्रोग्राम किया है तो भाई बहनों को सेंटर वालों को बहुत इसका लाभ मिला है। और जो इस भट्टी में आते हैं तो वो 5 दिन जो यहाँ पे रहते हैं, तो हमने देखा कि यहाँ मधुबन की जो क्या नाम है तपोभूमि है, वरदान भूमि है, और बाबा की जो साकार बाबा की पालना कर्म भूमि है, जो वो हमने बाबा को साकार में तो नहीं देखा परंतु जब यहाँ पे आते हैं तो बाबा की जो एक एक चीज बाबा के कमरे में, बाबा की कुटिया में, हिस्ट्री हॉल में, शांति स्तंभ में जब हम बैठते हैं तो बाबा वो साकार हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि हमने बाबा को तो नहीं देखा, परंतु अब यहां पे आते हैं तो बाबा की जो वासना होती है, वाइब्रेशन जो होते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि बाबा हमारे सामने ही है। और फिर उसके बाद हमारी दादियों ने जो तपस्या की बाबा को, और बड़े बहनों ने, भाइयों ने जो इसको संभाला, तो मैं तो मधुबन वासियों को, जितने भी पांडव भवन के जो भाई बहन हैं, इनकी तपस्या का फल है। जो बाबा के समय वातावरण था वो आज भी वैसा ही बना हुआ है। तो पांडव भवन वाले भाइयों को खास तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा जो इस बार का जो अनुभव रहा, जैसे हमारी दादी जी और दीदी जी इस यज्ञ को संभालते थे, तो आज हम देख रहे हैं कि हमारी शशि दीदी जी, शीलू दीदी जी ऐसे ही संभाल रहे हैं जैसे हमारी दीदी और दादी संभालते थे। तो मुझे भी ऐसा प्यार, ऐसी भावना, ऐसी वासना।
विजय बहन ने कितनी सेवा की, उनको भी याद।
हाँ, वो मैं आपको सब बताऊंगा दीदी, पहले तो आप लोगों का जो ना पूरा हो, तो फिर हमारा जो आएगा तो उनका भी बताएंगे। तो इतनी भावनाएं आती है कि जैसे दादियां प्यार देती थी, ऐसे दीदियां प्यार दे रही हमें, तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है। और फिर हमारे पांडव भवन के जो भाई हैं, एक एक भाई, सतीश भाई जी और अवतार भाई जी और अपने क्या नाम है चंद्रशेखर भाई जी और अपने जितने भी बड़े भाई हैं, यहाँ इन सबसे जब मिलते हैं तो ऐसी भावना आती है कि जैसे बाबा की जो पालना इन्होंने ली है वो हमें मिलने का वो करते हैं। और फिर इसके बाद इस ग्रुप में जो हमारी विजय दीदी जी और अपने शकुंतला दीदी जी जो कैथल से आए हैं, भादुगढ़ के जो भाई बहन आए हैं, तो इन्होंने खास तौर पे जो हमारी विजय दीदी है जी, इन्होंने जो कोऑर्डिनेट किया इस प्रोग्राम का भट्टियों में, तो मुझे तो दीदी का इतना प्यार स्नेह मिला और इतनी इनसे वासना आ रही थी, ये तो बिल्कुल फरिश्ता बनी हुई है, इतनी मधुर मीठी और एक एक एक्यूरेट टाइम पे आती थी। और सारा जो भी भाई बहन आते थे उनका धन्यवाद करना, उनका परिचय देना, और फिर उसके बाद इन्होंने भी क्लास कराई तो वो भी हमें बहुत अच्छी लगी। और खास तौर पे दीदी ने इस बार जो भट्टियों में जो भाई बहन आए, खास तौर पे हमारी गीता दीदी जी, सुदेश दीदी जी, सविता दीदी जी और बड़े जो भाई सूरज भाई आए, तो सभी में बहुत, मोहन भाई जी आए, सभी का बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और जो भाई बहन यहाँ पे आए हुए हैं, जब एक एक से मिलते थे तो उनके दिल से इतनी दुआएं निकलती थी कि भाई जी आपने तो कमाल कर दिया, बाबा ने कमाल कर दिया, यहाँ पे आके हम इतना अच्छा अनुभव करते हैं। एक छोटा सा अनुभव मैं सुना के पूरा करता हूँ। मैं यहाँ जब भी आता हूँ तो मुझे बड़ा मौका मिलता है यहाँ पे, और मैं जब बाबा के कमरे में बैठता हूँ, तो पिछली बार जब आया था मैं, तो बाबा को मैंने एक बात कही, बाबा हम सुनते थे कि बाबा जब दृष्टि देता था तो भाई बहन एकदम अपनी सुध बुध खो के और बाबा की गोद में चले जाते थे। तो मैंने कहा साकार में तो बाबा मैं आपके पास आया नहीं, मैं तो अब अव्यक्त होने के बाद आपके पास आया हूं, अगर आप ठीक समझो और मेरा प्यार और सच्ची लगन है तो मुझे एक बार थोड़ा सा वो अनुभव कराओ। तो पिछले साल जैसे ही मैं बाबा को ये सिर्फ बात कही थी और बाबा ने मुझे इतनी पावरफुल दृष्टि दी और मुझे ये ही नहीं पता लगा कि कमरे में कौन बैठा है, मुझे तो बाबा और मैं दिखाई दिया और एकदम मुझे ऐसा लगा कि बाबा ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। तो पिछले साल का ये अनुभव था। और इस साल मैंने क्या किया कि बाबा, मैं भी बाबा से बहुत रू रिहान करता हूं, और बाबा से इस बार मैंने क्या कहा, बाबा मैंने तो साकार में आपको देखा ही नहीं, कल शाम की 5:30 बजे की बात बता रहा हूं। और फिर उसके बाद बाबा ने मुझे इतनी पावरफुल दृष्टि दी, जैसे बाबा आए हुए थे ना, अव्यक्त बाबा आए हुए थे बाप दादा, तो ऐसे बाबा ने मुझे पहले तो इतनी पावरफुल दृष्टि दी कि मुझे अपना वातावरण भूल गया, देह भूल गया। और फिर उसके बाद मैंने कहा बाबा ये तो मैंने बहुत अनुभव किया, इससे मेरा काम नहीं चलेगा। तो मैंने संकल्प ये किया था कि मैंने कहा बाबा आज मैं आपको साकार में देखना चाहता हूं। तो जैसे ही मैंने ये बात की और बाबा को दिल से लगी ये बात, तो बाबा ने, मैंने कहा बाबा के एक सेकंड के लिए कराए, तो मैंने जैसे ही बाबा को कहा वैसे ही बाबा का जो लाइट का जो चित्र था वो बदल के जैसे बाबा साकार में बैठे हैं और बाबा ने मुझे दृष्टि दी, बोला बच्चे दिल पूरी हुई, तो मैंने कहा ये तो बाबा की कमाल है, मुझे एक सेकंड ऐसे लगा कि जैसे बाबा साकार में बैठे हैं। तो कहने का भाव ये है कि जो बात हम बाबा से दिल से कहेंगे तो ऐसी पूरी होगी। और मेरा तो ये अनुभव है कि बाबा को एक ही बात, बस दिल से बाबा के बन जाओ और दिल से बाबा का बना लो, तो फिर बाबा के दिल में ही बैठे रहोगे। तो 30 साल मुझे हो गए हैं और 30 साल में मेरी कभी मुरली मिस नहीं कराई बाबा ने, कभी अमृत वेला मिस नहीं कराया, कभी बैच मिस नहीं हुआ। मैं घर से जब भी बाहर जाता हूं बाबा से मिलके जाता हूं और घर पे आता हूं तो बाबा को बताता हूं। और पांचवी बात, मैं जो अपना लौकिक में हम अपना खर्च जो करते हैं तो मैंने निश्चय किया है कि उससे भी ज्यादा हम बाबा के ज्ञान में सफल करें। ये 5 बातें मैंने पक्की की थी। जब बड़ी दादी को जब मैंने बताया तो बड़ी दादी जी ने मुझे 20,000 की सभा में ओम शांत डायमंड हॉल में अनुभव सुनाने की। तो मुझे जो है कहना, मैं अपनी ईशु दादी थी वो कहती थी कि ये तो हमारा घरू भाई है, तो मुझे समझ में भी आया था। फिर मोहिनी दीदी बैठी थी, घरू भाई का मतलब घर जैसा भाई। और दादी बड़ी मेरे को कहते थे भाई आपको कुछ सल्वेशन चाहिए, तो मुझे सल्वेशन का भी शुरू में नहीं पता था। फिर दीदी बोली ये सल्वेशन का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ जब मधुबन आते हैं तो कुछ चाहिए। मैं कहा नहीं दादी, मुझे तो आपका प्यार चाहिए। और फिर दादी ने मुझे इतनी मीठी दृष्टि दी, वो दृष्टि मुझे अब तक याद रहती है। और उसके बाद हमारी मुन्नी बहन जी जब से दादी गई है तो वही पालना मुझे और मेरे परिवार को दे रही है। तो ऐसे हमारी बड़ी दादियों का और दीदियों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और एक बात लास्ट में कहकर खत्म समाप्त करता हूं कि जैसे हम मधुबन में आते हैं तो सभी भाई बहनों के मन में क्या बात आती है, अभी बाबा नहीं आ रहे, अभी दादियां नहीं है, हमारे मुख से अब ये शब्द नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि बाबा भी यही है, सूक्ष्म में दादियां भी यही है। पर जो पालना हमें बाबा से दादियों से ली है वो पालना अब हमारे जो नए भाई बहन आ रहे हैं उनको निमित्त बन के हमको देनी है, ताकि उनको भी वही प्यार, वही तपस्या और वही भावना उनको आए। ओम शांति।